आरवी सुभाष जी के कमरे में चली गई। अंशु तो तुरंत जाकर उनसे लिपट गई। सुभाष जी ने भी उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, आ गया हमारा बच्चा। यस दादू, अंशु आपके पास वापस आ गई, अंशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया और लबों पर मोहिनी मुस्कान फैलाए उन्हें देखने लगी। सुभाष जी ने प्यार से उसके गाल को छूकर मुस्कुराकर सवाल किया, कैसा लगा आपको वहाँ? अंशु को बहुत मज़ा आया दादू, पता है वहाँ ना टूटू नानी थी और दोनों ने अंशु को बहुत सारा लव किया। नानी ना मम्मा की तरह हैं, बहुत स्वीट। अंशु को वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय भी किया। नानी बहुत यमी खाना बनाती हैं। पता है दादू, आज डैडी भी आए थे, वो मम्मा और अंशु को वापस ले आए, पर अंशु ना नानी के पास फिर से जाएगी मम्मा के साथ। वो इतनी एक्साइटेड लग रही थी कि सुभाष जी के लबों पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। आरवी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनके पास आई और झुककर उनके पैर को स्पर्श किया। सुभाष जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान आपको सदा खुश रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। अच्छा बताइए, शान ने कुछ गलत तो नहीं कहा वहाँ? और आपकी मम्मी ठीक हैं? आपके आने के बाद वो अकेली रह गई होंगी ना? आरवी ने मुस्कुराकर कहा, पापा के जाने के बाद मैं और माँ ही थे, अब माँ अकेली हो गई हैं, पर वहाँ रश्मि है उनका ध्यान रखने के लिए। और आप फिक्र मत कीजिए, उन्होंने वहाँ कुछ गलत नहीं कहा, सब अच्छे से हो गया। उसकी बात सुनकर सुभाष जी ने सुकून की सांस ली कि सब ठीक से हो गया, वरना सबको यही चिंता थी कि शान गुस्से में वहाँ कुछ गलत न कह दे। आरवी उनके पास बैठकर बात करने लगी। शान अपने कमरे में गया और कबर्ड खोला तो उसकी आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गईं। अंदर उसकी जगह आरवी के कपड़े और बाकी चीज़ें रखी हुई थीं। ये देखकर उसका गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया और वो गुस्से से चीखा, आरवी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि नीचे सुभाष जी के साथ बात करती आरवी कांप उठी। घर के नौकर भी डर गए। सब हॉल में इकट्ठा हो गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही शान एक बार फिर आरवी का नाम लेकर चीखा तो आरवी झट से उठकर खड़ी होते हुए बोली, डैड मैं देखकर आती हूँ, आप अंशु को यहीं अपने पास रखना। सुभाष जी ने हामी भर दी क्योंकि अभी अंशु का उसके साथ जाना ठीक नहीं था। आरवी ने रूम से बाहर निकलते हुए दरवाज़ा भिड़का दिया। वो लिविंग रूम में पहुंची तो सबको वहां खड़ा देख थोड़ी अजीब महसूस करने लगी क्योंकि शान उसका नाम लेकर चिल्ला रहा था। उसने नजरें उठाकर नहीं देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अर्पिता जी भी उसके पीछे चली गईं। आरवी जैसे ही कमरे के गेट पर पहुंची, शान जो उसी दिशा में देखकर चिल्ला रहा था, उसने उसको खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, ये सब क्या है? तुम्हारा सामान मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना कि ना तुम मुझे यहाँ दिखनी चाहिए, ना ही तुम्हारा कोई सामान मुझे मेरे रूम में नजर आना चाहिए। आरवी उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखते हुए हैरानी से कहा, मेरा सामान यहाँ? नहीं, मैंने तो अंशु के कमरे में अपना सामान रखा था। अच्छा, अगर तुमने अपना सामान यहाँ नहीं रखा तो क्या वो खुद चलकर मेरे कमरे में आ गया है? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जानता हूँ मैं, ये सब तुम्हारी चाल है। पहले मेरे परिवार को अपने झांसे में फंसा लिया, अब कमरे पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। चुपचाप अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ मेरे सामने से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि बड़ी माँ तुम्हें यहाँ लाई हैं, और खुद तुम्हें और तुम्हारे सामान को अपने घर से बाहर फेंक दूंगा। शान के गुस्से में कही बात आरवी के दिल पर जा लगी, पर इस बार वो चुप नहीं रह सकती थी। उसने भी गुस्से में चिल्ला कर कहा, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं नहीं लाई अपना सामान यहाँ, मैं तो यहाँ थी भी नहीं। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से अर्पिता जी की सख्त आवाज आई, सच कह रही है आरवी, वो अपना सामान यहाँ नहीं लाई है, उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, हमने उनका सामान यहाँ रखवाया है। आरवी ने हैरानी से पीछे मुड़कर उन्हें देखा, वहीं शान ने भी उनको हैरानी से देखते हुए कहा, बड़ी माँ। उसने इतना कहा ही था कि अर्पिता जी ने अपना हाथ आगे करके उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और आगे आते हुए कहा, मैंने रखवाया है आरवी का सामान इस कमरे में, क्योंकि आप माने या ना माने, अब वो आपकी पत्नी है और आपके रूम पर, आपकी हर चीज पर, खुद आप पर भी उनका बराबर का हक है, इसलिए अब से आरवी यहीं रहेंगी इस कमरे में आपके साथ, और अगर आपने इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ एक मासूम से उसका हक छीना जाए उस घर में हम नहीं रह सकते। उन्होंने अपना फरमान सुनाया, जिसे सुनकर शान ने बेबसी से उन्हें देखा, पर उनके भाव नहीं बदले। उन्होंने आगे कहा, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, ये हमारा आखिरी फैसला है, अब आप देख लीजिए आप क्या चाहते हैं। बेशक आप आरवी को और उनके सामान को अपने कमरे और अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, आखिर आपके कमरे और घर पर आपका हक है, पर याद रखिएगा कि आरवी यहाँ से अकेली नहीं जाएगी, हम भी उनके साथ जाएंगे। अपना आखिरी फैसला और फरमान सुनाकर अर्पिता जी वहाँ से चली गईं। अब वहाँ गुस्से से तमतमाया शान और हैरान परेशान आरवी ही रह गए थे। टू बी कंटिन्यूड। कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? लाइक एंड कॉमेंट करके बताइए।